शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 25 जुलाई साकार बाबा की मुरली है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें सदा उल्लास में रहना है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है और उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई से ही ऊंच पद पा सकेंगे। और ये पढ़ाई बहुत सहज है, तुम कहां भी रहते इसको पढ़ सकते हो। बाबा ने कहा, घर में रहते भी पढ़ सकते हो, विलायत में भी पढ़ सकते हो, खटिया पर लेटे हुए भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने की हिम्मत रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को कहते हैं, बाबा आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा ने कहा कि मेरा ये काम नहीं है, अगर मैं सबकी बुद्धि का ताला खोलूं तो सभी सतयुग में आ जाएंगे। तो ये ड्रामा पर है, अगर ड्रामा में उनका ताला खुलना होगा तो फिर समय पर वो ताला खुलेगा। फिर बाबा ने एक बात और कही कि भारत में भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं, विदेशों में उन्हें गॉड फादर कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ मात पिता कहते हैं, इसीलिए भारत को मदर कंट्री कहा जाता है। और किसी देश को मदर कंट्री या माता, जैसे हम भारत माता कहते हैं, तो माता नहीं कहते हैं। सुनते हैं। नीचे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाएं मिलती हैं। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? बच्चों को किस उल्लास में रहना है? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। पता नहीं हम बन सकेंगे कि नहीं बन सकेंगे, तो बाबा ने कहा कि दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। पढ़ाई पढ़ने की हिम्मत जरूर चाहिए। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, ये गीत में महिमा है। तो बाबा ने कहा, सुना सुना हुआ है सबने गीत, महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। एक शिव बाबा की ही सारी महिमा है। बाबा ने कहा, और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि उनको भी बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। इसीलिए बाबा की ही महिमा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं, उनकी ही महिमा है। सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके। लक्ष्मी नारायण को भी राजाई तो तब मिली जब शिव बाबा संगम पर आए और उन्हें पुरुषार्थ कराया। तो बाबा ने कहा तो और किसकी महिमा है नहीं, तो फिर सारी महिमा किसकी हो गई? शिव बाबा की। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार ही नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंचते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है। जो भी प्राप्ति होती है किससे हो रही है? शिव बाबा से। उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। कोई ऐसे ही तो उनको बैरिस्टर नहीं बना देता, पढ़ना पड़ता है तब जाकर के बैरिस्टर बनते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भी जो भी बनना है वो पढ़ाई से बनना है, बाबा नहीं बना देगा, अपनी पढ़ाई से हम बनेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। दुनिया में भी जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं फिर वही ऊंच पद पाते हैं। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सभी तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, भले दुनिया में अच्छे बुरे मनुष्य हैं लेकिन पतित तो सभी हैं। बाबा ने कहा पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते, सभी पावन हैं। यहां पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं। भले ही यहां पर कलयुग में भी सन्यासी तो हैं जो पवित्र रहते हैं, बाबा ने कहा, तो फिर पवित्र की महिमा गाई जाती है। तो उन सन्यासियों का गायन होता है, उनकी महिमा होती है। यहाँ तो यथा राजा रानी, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते? सब तो लिबरेटर गाइड नहीं हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा अल्लाह जैसे सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये ऊना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। है ही राजयोग, राजाई के लिए है। पढ़ाई भी, तो बाबा ने कहा बच्चों को ये ओना रहना चाहिए। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, सहज है, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। आप कोई बीमार है क्लास में नहीं आ सकता तो बाबा ये भी छुट्टी देते हैं कि खटिया पर सोए हुए सो नहीं जाना है, फिर क्या पढ़ेंगे तो लेटे हुए हम पढ़ सकते हैं। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को, दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यही बताना है तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता ना, कोई भी धर्म का हो। स्वधर्म तो आत्मा का वही शांति है, प्रेम है, सुख है। कोई और धर्म वाले को ऐसे थोड़ी कहेंगे उसको प्रेम नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, सबके लिए समान है। तो कोई भी देश, जाति, भाषा, धर्म, आत्मा तो एक ही है। तो बाबा ने कहा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, बाकी सब देह के धर्म है। आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुखवंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है, तुम समझा सकते हो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, सिटी फादर कहते हैं मेयर को, क्योंकि वो शहर का ख्याल रखता है। ऐसे ही बापूजी को राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। तो उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, इतना कुछ किया देश के लिए। तो बाबा ने कहा किसी को भी फादर कह देते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कहकर बुलाते हो, यहाँ ही बाप आकर मुखवंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। तो ये राज बाबा ने बताया कि भारत क्यों मदर कंट्री है। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं, विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कहें बुलाते हैं। परंतु माता भी चाहिए ना, क्योंकि बाबा अडॉप्ट करते हैं तो माता भी चाहिए, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके अडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं इसलिए इनको मात पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप, फिर यहां आकर उत्पत्ति करते हैं, तो एडॉप्शन वाली उत्पत्ति, यहां तुम बच्चे जानते हो तो यहां तुम बच्चे बनते हो, तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम जहां सब आत्माएं रहती हैं, वहां भी बाप के बगैर कोई ले जा ना सके। स्वीट होम में भी बाबा जब आते हैं तभी ले जाएंगे, बाकी तो कोई ले जा नहीं सकता। कोई भी बोले, कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो तो पावन जरूर बनना पड़े। अगर स्वीट होम जाना है तो बिना पावन बने फिर नहीं जा सकते। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एजेब तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एजेड आत्माएं तो वापस घर जा ना सके, है ना, फिर चाहे सजा खा के पावन बने, चाहे योग बल से पावन बने, लेकिन पावन बनकर के ही जाना है। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद न करो, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे। नंबर 12, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था, जब यह राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। भले ही सम्मेलन करते हैं कई, आपस में भी देश मीटिंग करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं शांति की, बाबा ने कहा, लेकिन बाबा के सिवाय विश्व में शांति कोई करा नहीं सकते। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल हैं, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते। अब ऐसे नहीं कि वो कोई मेडिकल वाली नॉलेज पढ़ाएंगे या बिजनेस वाली नॉलेज पढ़ाएंगे या इंजीनियरिंग की नॉलेज पढ़ाएंगे। बाबा ने कहा वो कौन सी नॉलेज है वो भी नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। ये सब बातें बाप वैद्य समझाते हैं, इन्हें अच्छी रीति धारण कर हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। देवी देवताओं के चित्र कैसे होते हैं, चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, हर्षित, हर्षित चित्त, इसको बाबा कहते हैं। स्कूल में ऊंच दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। जो आईएएस वगैरह पढ़ते हैं, आईएएस आईपीएस सब ऊंचे ऊंचे एग्जाम पास करते हैं, तो बाबा ने कहा फिर ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, उस पढ़ाई से भी ऊंची पढ़ाई है, वो तो एक जन्म की और ये जन्म जन्मांतर की पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है, सबसे ज्यादा विघ्न डालती है माया याद में। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। माया बहुत जबरदस्त है, फेल हो जाते हैं, फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं तो महिमा गाई जाती है, माने जो शुरू से एक रस पुरुषार्थ करते हुए निर्विघ्न चलते हैं तो फिर उनकी महिमा भी होती है। बाप कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। बाबा हमें प्रजा बनाने नहीं आए हैं, राजयोग से राजा बनाने आए हैं, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है, आप सब एक जैसा तो नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा फिर वो प्रजा बनते हैं। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट नंबर ये थर्ड नंबर आएंगे। टीचर भी समझ जाते हैं स्टूडेंट कैसा पढ़ते हैं, ये किस नंबर का है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे हैं। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है, एक सेकंड में बाबा को क्या देरी लगती है। फिर लज्जा आएगी हम नापास हो गए, नापास होने वाले को कौन प्यार करेंगे। मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, दूसरी पॉइंट। लेकिन बाप कहते हैं नंबर वन गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप ना। पुराने समय में इसको बायोस्कोप कहते थे, अभी तो सिनेमा फिल्म। तो बाबा ने कहा नंबर वन गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप, उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बायोस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए, यहाँ तो कोई ऐसे नहीं है। हाँ ज्ञान काल में दुनिया में ऐसे होते हैं, बिना फिल्म देखे उनको नींद ही नहीं आएगी, और आजकल तो घर घर में सब अवेलेबल है। बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। उससे क्या सुख मिलता है, उस समय का सुख मिल गया और बाद में क्या है दुख। तो इसको कहते हैं तमो प्रधान दुख। और जो सतो प्रधान सुख होता है वो शुरू में सुख नहीं लगता है, लेकिन बाद में फिर वो सुख ही सुख है। तो बाबा ने कहा यह है विनाशी खुशियां, थोड़े समय की। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है, जो अभी भी है और आने वाले आधा कल्प तक। बाबा ने कहा 50-60 जन्म तक तुम इतना खुश रहते हो, इतना सुखी रहते हो, केवल 21 जन्म की बात नहीं। तो बाबा ने कहा वो बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे तो आगे 21 जन्म के लिए लिखते थे और अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म। क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। द्वापर युग से भले देह अभिमान शुरू हो जाता है, विकार शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी धन बहुत होता है तो सुखी रहते हैं। जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, और ये तो जब बिल्कुल तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाबा तो सभी का उद्धार करते हैं जैसे भी आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम। वो जो अजामिल की कहानी आती है कि सारी जिंदगी भगवान का नाम नहीं जपा, लास्ट में उसके बेटे का नाम था नारायण, तो वो मरते समय बेटे को याद करता है और वो गलती से भी नारायण का नाम ले लिया, अभी तो भक्ति की कहानी है, तो भी उसकी गति हो जाती है क्योंकि लास्ट में मरते समय अंतमति सुगति तो नारायण का नाम ले लिया, तो उसका उद्धार हो गया। तो बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ, कल्याण तो सबका होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं शांति में व सुख में। हाँ, जिनको शांति में जाना है वो शांति में चले जाते हैं, जिसको सुख में जाना है वो सुख में आ जाते हैं। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात हो नहीं सकती ना, उस सतयुग में दुख की बात तो नाम निशान ही नहीं है, ना दुख ना अशांति, और यहाँ तो घर घर में अशांति है। हाँ, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ झगड़ा ना होता हो, लड़ाई ना होती हो, तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है, कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितना फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा अलग। भारत में ही देखो कितनी भाषाएं हैं, हर स्टेट की अपनी अलग अलग भाषा है, और हर स्टेट की छोड़ो एक ही स्टेट में भी फर्क है। अगर महाराष्ट्र में है तो 2-3 प्रकार की मराठी बोली जाती होगी, है ना, ऐसा ऐसा भी है कि उसी भाषा में ही फिर फर्क आ जाता है। तो कितना बाबा ने कहा डिवीजन है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते कि ये प्राचीन भाषा है। मतलब सतयुग की भाषा नहीं है, द्वापर युग आदि की भाषा भले ही है, द्वापर युग में शुरू में ही जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने जो भी शास्त्र लिखे वो फिर संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जो भी वेद पुराण जो भी ग्रंथ लिखे गए वो सब संस्कृत में लिखे गए। तो बाबा ने कहा वो पूरी प्राचीन भाषा नहीं है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है ये तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो, हाँ इनको सद्बुद्धि दो, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। रोज हम बाबा की मुरली सुनते हैं और उससे हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला वैद खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए। हाँ, क्योंकि वो तो सबका पिता है, खाली हमारा पिता थोड़ी है। तो बाबा ने कहा फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए, हम सबका ताला कैसे खोलेंगे, उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे। हाँ, फिर सतयुग में तो फिर भीड़ हो जाएगी, सतयुग में तो जनसंख्या कितनी कम है। ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा, ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है, सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी, ये तो कायदा नहीं, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है कि ये अच्छी रीति पढ़ते हैं। बाबानी का पता चलता है ना, ग्रेड स्टूडेंट का कौन सा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। तो बाबा ने कहा हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है, और जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजा खा के घर गए तो फिर पद कम हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। तो शांति का सही अर्थ बाबा ने कहा, जहां भी शांति की बात होती है तो शांति का सही अर्थ और शांति कैसे हो सकती है और कहां हो सकती है, ये तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। आखिरी समझेंगे जरूर, तुम बच्चों का नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में कितनी किताब पढ़ते हैं, कितनी बड़ी बड़ी किताबें, जितनी ऊंची पढ़ाई फिर उतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। यहां तो कुछ नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है, एक कहानी की तरह है। तो बावनी का पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जौहर आए, फल बंधन में भी है फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। बंधन बांधेलियां होते हैं ना, भाई भी कोई कोई बांधेले होते हैं, तो अगर बंधन में है बाबा ने कहा और बहुत याद करते हैं तो फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। आजकल तो इतना बंधन किसी को नहीं होता, शुरू शुरू में जब भारत में सेवाएं शुरू हुई तब काफी माताओं को बहुत कड़े बंधन होते थे, बिल्कुल घर से उनको निकल नहीं देते थे। उमंडी के समय भी ऐसा हुआ, तो बाबा ने कहा लेकिन अगर घर बैठे भी बाबा को याद करते हैं प्यार से तो भी बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। कोई बंधन वाली माता तो नहीं है यहाँ पर, भाई तो ज्यादातर नहीं होते हैं, कोई है तो हाथ उठा सकते हैं। उठाओ, एक ने हाथ उठाया, मेजोरिटी है, तीन चार नहीं, फिर भी तीन चार ने उठाया है। युक्ति से निकल कर आते हैं घर से, जो बंधन वाले होते हैं ना वो दूसरी दूसरी बात सुना के आते हैं, हम सीधा माउंट आबू जा रहे हैं ऐसा नहीं सुनाते। तो युक्ति से मुक्ति मिलती है। तो बाबा ने कहा याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद का पा सकते हैं, क्योंकि बहुत याद करते हैं, बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं तो वह आंसू मोती बन जाते हैं। बाबा की याद में जो आंसू निकलते हैं वो बाबा के पास मोती बनकर पहुंचते हैं। तो बाबा ने कितना प्यार किया आज बांधेलियों को, अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा सार है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। प्रदान लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वो कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, बल्कि और ही समस्याओं पर विजयी बनते हैं, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते व कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। सबको बदलना सिखाया बाबा ने, दृष्टि कैसी होनी चाहिए, साधारण सांसारिक दृष्टि कैसी होती है, और जब हम अलौकिक हैं तब हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी होती है। तो लौकिक को अलौकिक में बदल देना है। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे। हम किस लिए कर रहे हैं? सेवार्थ कर रहे हैं। बाबा ने हमें सेवाधारी बनाया। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, लौकिक काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुदाई खिदमतगार हैं, हम सेवा पर हैं, तो उसको बदल देना है। तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। नहीं तो कई बार जो नेगेटिव वाइब्रेशंस वाली आत्माएं होती हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। तो बाबा ने कहा, जब हमारी स्थिति ऐसी होगी तो फिर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जम लग जाएगा। सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जम लग जाएगा। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, यानी व्यर्थ संकल्प मन में ना चले। अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली, वो तभी होती है जब क्यों क्या में चले जाते हैं, तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। एक बार रचना रच ली तो फिर उसकी पालना करनी पड़ेगी, समय संकल्प एनर्जी फिर उसमें खर्च होती रहेगी। इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे, तभी विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे, विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। मनमोहिनी दीदी की विशेषताएं सुन रहे हैं। आज है कथनी करनी और रहनी समान, कई हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। दीदी हमेशा कहती ये तुम्हें शोभता नहीं है, बाबा के बच्चों की कथनी करनी और रहनी समान होनी चाहिए। दीदी को इस बात पर बहुत ध्यान था, दीदी जी वही शिक्षा दूसरों को देती जिसे वह स्वयं पालन करती। उनकी मूल शिक्षा थी कभी किसी को ऐसी बातें नहीं सुनाओ जो उसका घर ही फिट जाए। आपस में प्यार प्रेम से रहो, कभी घर में झगड़ा ना हो, यह ध्यान रखो। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। भट्टी में आए हुए सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है, अभी मुरली क्लास के बाद योग होगा, योग के पश्चात आप सभी को यहां ही बैठे रहना है। चाहे भट्टी में आए हुए भाई बहने हैं जो सेवा देते हैं, सेवाधारी हैं, और टीचर्स बहने, सभी को यहां पर प्रेजेंट रहना है। आप सभी को यहां पर क्लास के बाद आदरणीय शीलू दीदी जी सौगात देंगे, और साथ में डॉक्टर सविता दीदी और कविता बहन जी भी हैं। तो आप सभी यहां पर योग के पश्चात बैठे रहेंगे, और अगर कोई भट्टी वाले भाई बहने किसी कारणों से पांडव भवन में या इधर उधर कहीं होंगे तो कृपया आप भी यहां पर आ जाएं। आप सभी को क्लास के बाद अभी सौगात दी जाएगी। ओम शांति।